الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فقالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک یہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر دونوں شیخین، اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ نریشن بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات مہلک یعنی کہ تباہ کن بیماریوں گناہوں سے بچو، جسے کہا گیا السبع الموبقات. تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وما ہننا، یہ سات تباہ کن گناہ جو ہیں، یو نو ڈینجرس، جو ڈیڈلی گناہ ہیں، یہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ون از الشرک باللہ، سب سے پہلے تو شرک. نمبر ٹو والسحر، جادو ٹونا وغیرہ. نمبر تھری وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، یعنی کہ قتل، مرڈر جو ہے کسی کا کرنا، کسی بے گناہ کا یہ. پھر نمبر فور و اکل الربا، سود کے بارے میں خاص طور سے فرمایا، ربا کے بارے میں، جو انٹرسٹ بیسڈ کام ہے ان سے بچنے کے لیے. اسے سب الموبقات یعنی کہ سات ڈیڈلی سنس کے اندر شمار کیا گیا اس کا. اور پھر آگے کا فرمایا واکلو مال الیتیم، کسی یتیم کا مال ہڑپ لینا، کھا جانا، اسے بھی اس میں کہا گیا. پھر وتولی یوم الزحفی، یعنی کہ لڑائی کے دن جب اللہ کے راستے میں نکلا ہوا اور وہ بھاگتا ہے دم دبا کے ڈر کے، کاوڈس شو کرنا، اس کو بھی یہ اس گناہوں میں شامل کیا گیا. اور وقذف المحصنات الغافلات، یعنی سیدھی سادھی جو بھولی بالی، یعنی کہ نیک شریف کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگانا، جسے قذف کہا گیا، اس کے اوپر ایکوزیشن لگانا وداؤٹ اینی پروف، غلط تہمت لگانا، اس کی بہت ہی سخت ممانعت اور وعید بیان فرمائی گئی. تو ان سات بیماریوں سے ظاہر ہے یہ سات کے ساتھ ایسے ہیں جو ان سب سے ہی بچنا بہت ہی ضروری ہے. ظاہر ہے شرک تو سب سے پہلے، ان الشرک لظلم عظیم، سے بڑا تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر ہے، آف کورس، ڈیفینیٹلی. اور ظاہر ہے سحر، جادو کے بارے میں بھی سخت وعید ہے، یہ بھی آدمی کو کفر تک ہی گویا کہ پہنچا دیتا ہے. اور ظاہر ہے مرڈر تو پھر آف کورس اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کا مرڈر کر دیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا مرڈر کر دیا، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے. اور پھر فرمایا وہ اکل الربا، ربا کے بارے میں خاص طور سے ایک تاکید فرمائی، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ اسے شامل فرمایا. ظاہر ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں اور قوموں میں جس طرح سے ربا وغیرہ کا، سودی ایک لین دین کا جو رواج تھا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ آج کل بھی، آج تک بھی ہے. اسی طرح عربوں میں بھی اس زمانے میں ربا کا بہت ذرا کامن ایک فینومینن تھا، ڈیولپ ہوا ہوا تھا پہلے سے ان کی رگ رگ میں، بلکہ پراپر فائنانس کمپنیز بنائی ہوئی تھی اس وقت لوگوں نے، جو قافلے اس وغیرہ اس ٹائم پیریڈز میں بھی جایا کرتے تھے مدینہ سے پرشیا کی طرف یا شام کی طرف ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور وہ وہاں سے مال تجارت لایا کرتے تھے. تو ایون فائنینشیل کمپنیز تھیں لوگوں کی جن جو نے فائنانس کیا کرتے تھے، اور ربا ان سے سود وصول کیا کرتے تھے اس پر. ظاہر ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو انٹرسٹ کا کاروبار ہے، ظاہر ہے اس کے یہ ایک انیشل پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. کسی بھی سوسائٹی کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کے اندر انٹرسٹ بیسڈ کاروبار کو کامن کر دیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی ان اٹ سیلف ڈسٹرکشن کی طرف چلی جائے گی. بیکاز ظاہر ہے اس میں غریب آدمی جو ہوگا وہ غریب تر ہوتا جائے گا، اور اس کے اوپر قرضے کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، اور ظاہر ہے ایک دفعہ وہ اپنا قرض پورا، جس طرح سے جو جسے حرام کہا گیا قرآن پاک میں بھی، حرم الربا، تو وہ یہی ہے کہ اس زمانے میں تو بہت کامن تھا، لوگوں سے لوگ پیسے کسی سے یا قرض لے لیتے تھے، پھر جب اپنے وقت پہ ظاہر ہے پیسے ادا نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، تو جو سود خور تھا، جو فائنینسیئر تھا، वो उनसे उस पर और इंटरेस्ट लगा देता और मज़ीद उनके ऊपर बोझ बढ़ता जाता। और यही आजकल के ज़माने में भी बहुत कॉमन देखा जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। उसका मेन वजह उसकी यही इंटरेस्ट बेस्ड सोसाइटी ही है, जबकि इस्लाम ने इसकी सख्त ममानियत बयान की और जगह जगह कुरान पाक में और अहादीस में हमें इसकी सख्त वईदें मिलती हैं। और शरीयत के शुरू में तो जाहिर है कि इतना कॉमन एक चीज़ थी, सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके ऊपर ममानियत और मना फरमाने की ताकीदें आती रहीं, लेकिन फिर फाइनली बिल्कुल इस्लाम के एंड में जो लास्ट आयात बिल्कुल कुरान पाक की नाजिल होती हैं, जो कुछ रिवायात से मालूम होता है, बिल्कुल लास्ट वही भी यही थी। और बहरहाल बिल्कुल सूरह बकरा की जो लास्ट एंड में आयत नंबर 275 से ऑनवर्ड्स 280 तक जो रिबा से मुतालिक ख़ास तौर से आयात है, जिनके बारे में आता है कि कुरान की लास्ट नाजिल होने वाली आयात भी थी, बाज़ रिवायात से पता चलता है, जो अल्लज़ीना याकुलूना रिबा से लेकर ऑनवर्ड्स चलती हैं और फिर वन तसद्दकु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून तक। तो इसमें जाहिर है बिल्कुल कैटेगोरिकली सराहत के साथ बिल्कुल बता दिया गया कि जो पिछला अगर किसी ने कोई सूद का मामला किया भी है तो वो भी अब उस पर इंटरेस्ट का जो उसका डिमांड है वो नहीं कर सकता, बल्कि वो भी माफ़ हो जाएगा। और बिल्कुल कैटेगोरिकली इसीलिए हज्जतुल विदा के मौके पर तो बिल्कुल साफ साफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि मेरे अपने चचा अब्बास के ज़िम्मे जो सूद है मैं वो भी माफ़ करता हूँ, खुद ही माफ़ किया। और अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर है सहाबी थे, उन्होंने कहा सूद तो क्या, मैं तो अपना कर्ज जो था वो भी माफ़ कर देता हूँ आज। बहरहाल टू स्टे ऑन टू आर टॉपिक टुडे, सूद के बारे में इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल कैटेगोरिकली कुरान में फरमाया गया और इतने सख्त अल्फाज में कहा गया, फ़ज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि ए सूद खोर से जो है वो अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है। गोया इतनी सख्त वईद है जो सूदी कारोबार करने वाले के बारे में, इंटरेस्ट बेस्ड काम करने वाले के बारे में आई कि उससे अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। यानी गौर किया जाए, इतने बड़े बड़े गुनाह हम लोग जिन्हें गुनाह समझते हैं, जिना है, यू नो, शराब अल्कोहल पी रहा है कोई बंदा, किसी को इवन कत्ल कर रहा है, इवन मर्डर करना किसी का, इतने बड़े बड़े गुनाहों के बारे में भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मेरी ऐलान जंग है तुमसे। लेकिन ये एक ऐसा गुनाह था रिबा का जो अल्लाह के नज़दीक इतना बड़ा था, क्योंकि ये फसाद फिल अर्ज़ के फसाद इससे मज़ीद फैलने का और स्प्रेड होने का ख़तरा था। तो इसलिए सोसाइटी को बचाने के लिए इतने सख्त अल्फाज में कहा गया कि इससे तो ऐलान जंग है मेरा। और इसीलिए इस हदीस में भी आया सबल मोबिकात का लफ्ज़ आया कि सबल मोबिकात, ये जो हलाक करने वाली तबाह कर देने वाली बीमारियां हैं, यानी ये वो गुनाह हैं जिन जो आदमी को यू नो उसकी जो असल ईमानी रूह है उसी को किल कर देता है, बंदे के अंदर से दिल मुर्दा हो जाता है रिबा खाने वाला ख़ास तौर से और इन सातों बीमारियों से ही। ज़ाहिर है जिस तरह से डॉक्टर्स वगैरह हैं और इतबा होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशंस के, उनमें जो भी दुनिया में यू नो फैलने वाली कोई बीमारियां होती हैं, वायरल बीमारियां हो या जिस किस्म की भी, तो उनकी दवाएं और ग़िज़ाएँ वगैरह उनकी यू नो ख़ास क्वालिटीज़ भी बयान करते हैं कि जी फलां आप ये फलां कोई किसी को फ्लू फैल रहा है, वायरल हुआ हुआ है, तो उसके लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाए, ये फ्रूट या वेजिटेबल या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी जिस बीमारी का इलाज है वो हमें बताते हैं डॉक्टर्स वगैरह, आजकल के ज़माने के फिजिशंस। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है वो तो ख़ातमुल अंबिया हैं और तमाम की तमाम हमें नॉलेज देने के लिए आए थे, तो उन्होंने ख़ास तौर से इस रिबा के बारे में इतनी सख्त ताकीद हमें बताई कि इससे पूरी की पूरी सोसाइटी गोया के तबाह होने के बिल्कुल हो जाने के कोने पे आ जाती है। तो इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है और इसके इतने सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ना सिर्फ दुनिया में तो हैं ही, हम देख ही रहे हैं आज, अगर हम देखते हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो बैंकिंग निज़ाम है दुनिया का, इसमें इतने बड़े हो चुके हैं वो तो अब कि इवन पूरी पूरी मार्केट्स क्रैश हो जाती हैं, गरीब आदमी डूब जाता है, मर जाता है, लेकिन दीज बिग बैंक्स उनके लिए तो आता है टू बिग टू फेल, एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज़ हम सुनते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, टू बिग टू फेल। ये टू बिग टू फेल का मतलब क्या है कि वो इतने बड़े पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि उनको फेल होने देना, ये इवन बड़ी बड़ी दुनिया की मोस्ट तरक्की याफ्ता ममालिक के भी यू नो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ऐसा अफोर्ड कर सकें कि कोई बड़ा बैंक फेल हो जाए। इतने इसके सख्त कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी के अंदर डेवलप हम होते हुए देख रहे हैं। ये बैंक्स इतने पावरफुल होते जा रहे हैं, दिन ब दिन होते जा रहे हैं। और ये एक बैंक, बल्कि हमने ये अपने देखा 2008 में जब क्राइसिस आया, और जिस तरह से उसका मेन रीज़न क्या था, उस लेवरेज, एक तो ओवर एक्सपोजर और डेरिवेटिव्स, इन सब का ताल्लुक घूम फिर के शॉर्ट सेलिंग हो, फ्यूचर्स हो, इन सब का ताल्लुक, ये सब जो बैंक्स ने काम किया, ये इतना करते करते एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जब मार्केट्स क्रैश हुई पूरी दुनिया में, एक फाइनेंशियल कोलैप्स आया, तो एंड ऑफ द डे बैंक्स को टू बिग टू फेल कहकर बचा लिया गया और आवाम का पैसा लगा लगा के पूरी दुनिया में उनको उनके फंड्स के ऊपर, उनके जो रिजर्व्स हैं उनको स्टेबिलिटी देने के लिए यूज़ किया गया। तो बहरहाल इसका सूद का फैक्टर जो है, ये तो हम अपने आंखों के सामने दुनिया में देख ही रहे हैं। और फिर दुनिया में तो जो देख ही रहे हैं, आखिरत में इसका क्या अंजाम होगा, एक रिवायत में आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब मेरा वाकया मेराज के हवाले से कि जब मैं गया तो मैंने देखा एक कुछ लोगों को, उनके बड़े बड़े पेट थे गोया के घनों की तरह, बड़े बड़े लाइक अ हाउस, इतना बड़ा पेट है किसी का, और उसमें सांप घूम रहे हैं बड़े बड़े, अंदर से बाहर से वो नज़र आ रहे हैं सांप। तो उन्होंने पूछा, या जिब्राइल ये कौन लोग हैं? ओ नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाउला याकल और रिबा, ये रिबा खाने वाले लोग हैं जिनको क़यामत में उनका अंजाम ये हुआ कि उनके बड़े बड़े पेट हैं और उनके घरों के जितने, और उसमें सांप घूम रहे हैं। वनाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हमें महफूज फरमाए और इसके बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बहुत ही एक डेंजरस सी चीज़ है। इसके इतनी सख्त वईदें हमें मिलती हैं कि एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है, रिबाउ सबून जुज़न, के रिबा के जो हैं 70 जुज़ होते हैं, पार्ट्स होते हैं, और आई सरूहा अन के हर रजुल उम्मा, के सबसे जो हल्का तरीन रिबा का जो जुज़ है वो ये है कि जैसे आदमी ने अपनी माँ से जिना किया हो। ना खुदा ना खास्ता, अल्लाह बचाए, कितना सख्त अल्फाज से इस हदीस में हमें बताया गया कि 70 हिस्सों में से सबसे जो अदना और मामूली हिस्सा है सूद का, वो इतना डेंजरस है जैसे कि कोई बंदा अपनी माँ से जिना कर ले। यानी माँ से तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल जिना को हम इतना बड़ा गुनाह समझते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, लेकिन कोई बंदा वो उससे भी बढ़कर अपनी माँ से जिना करे तो वो भी 70 दर्जों में से सबसे हल्का तरीन दर्जा बताया गया रिबा का। और शायद यही वजह है कि कुरान पाक में फरमाया, फ़अज़नू बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल की इससे जंग है। और फिर बाज़ औक़ात अब ये भी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि लोग अक्सर इसको अपने अल्फाज को इन मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी, मैं रिबा मैं खा तो नहीं रहा, मैं तो दे रहा हूँ, तो जी मैंने तो सूद लिया हुआ है, मैं तो उस पर भर तो रहा हूँ, लेकिन मैं किसी से खा तो नहीं रहा सूद, तो मैं तो इस वईद में आता नहीं हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में कैटेगोरिकली जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलही व कातिबहु व शाहिदैही व क़ालहुम सवाउन, के लानत भेजी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, नंबर वन बिल्कुल कैटेगोरिकली जो दे रहा है सूद, और फिर खिलाने वाले पर, और जो यानी कि दे रहा है सूद उसके ऊपर भी लानत फरमाई, और फिर वह कातिब इवन जो उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है, जो उसे लिख रहा है उसके ऊपर भी, और फिर जो उस पर विटनेस बन रहा है, गवाह बन रहा है, उन गवाहों के ऊपर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई और फरमाया ये सब के सर सब बराबर है, हम सवाउन, ये सब यू नो ये कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ये सब इस गुनाह में बराबर के शरीक हैं। यानी कॉमन आजकल लोग सवाल पूछते हैं अक्सर, जी मैं बैंक में काम करता हूँ, ख़ुद तो मैं तो जी सूद का काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ जो अपना मेन प्रोफेशन है, प्रोफेशनल एतबार से मैं सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ, उसकी तनख्वाह लेता हूँ। तो लेकिन अल्लाह के बंदे, बात यह है कि आप जो सुबह से शाम तक हम उस पर देखते हैं कि डॉक्यूमेंट किया जाता है, ये वो कातिब है जो उस डॉक्यूमेंट को फिल करता है, उस फॉर्म को फिल करता है, और फिर उस पर गवाह बनता है, शाहिदई जिसके बारे में आया, ये सब के सब बराबर हैं। तो इस गुनाह में, गोया के जुर्म में, सब के सब बराबर के शरीक हैं। इसीलिए इसे इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, और अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग कुरान पाक में तो कैटेगोरिकली से कहा गया। تو اس میں کسی قسم کی شرکت بھی لعنت الہی کا موجب ہے، اس کے بنا پر سود دینے والا، اس کی دستاویز، اس کا کاتب جو لکھنے والا ہے، اس پر گواہ بننے والا، یہ سب کے سب کیٹیگوریکلی ان سب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور کہا یہ سب برابر کے شریک ہیں، اس میں ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور اس سے بچنے کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خاص طور سے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی سود، کوئی بندہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے یا قرض دیتا ہے کسی کو، دوسرے بندے کو آپ نے قرض دیا، تو آپ اس کی سواری کے اوپر سوار بھی نہ ہوں. یعنی ایسا کریں گے اگر آپ نے کسی کو ہدیہ دیا اور اس نے ایز آ فیورٹزم کے طور پہ کہ جس نے مجھے قرض دیا ہے تو اپنی سواری دے دی، یا بدلے میں اس نے کوئی گفٹ دے دیا، تو آپ اسے قبول ہی نہ کریں، کیونکہ یہ بھی سود کے شبہ سود میں آ جائے گا. یعنی اس میں بھی ایک شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ بھی گویا کہ سود ہی ہے، آپ نے اسے قرض دیا تو اس پہ آپ کسی قسم کی اس سے فیور تک نہ لیں، اس سے بھی منع فرمایا. اسی لیے صحابہ کرام ظاہر ہے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ربا نازل ہوئی تو ہم لوگ، ظاہر ہے عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس کے بارے میں ولم یفسرہ، کہ صحیح تفسیر نہیں فرمائی کہ کون سا معاملہ کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈیٹیل سمجھی نہیں ہم نے شاید. تو فدعوا ربا اور ریبا، کہ سود سے بھی بچو اور سود کے شبے سے بھی بچو، جس میں شک بھی ہو جائے، ڈاؤٹ فل ٹرانزیکشن سے بھی بچو، اس کو میں بھی سود کا کہیں شک نہ پیدا ہو جائے. ظاہر ہے اب ربا جو ہے یہ ایک عربی کا ایک کامن بہت ہی معروف سا لفظ تھا جو نزول قرآن سے پہلے بھی بولا جاتا تھا، تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کا تو ایک لیول تھا، ایک سٹیچر تھا، انہوں نے تو اس کے شبہ میں ہونے والی چیز سے بھی منع فرما دیا کہ اس سے بھی بچنا چاہیے. بہرحال فقہائے کرام نے اور اس امت کے مجتہدین نے بہت ہی اس کو کیٹیگوریکلی کلیئر کرنے کی کوشش بھی اپنے طور پہ کی کہ کون سی ٹرانزیکشن سود ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی. بہرحال اس پہ علماء سے بندے کو رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کسر فان عاقبته تصير الى قل، کہ سود جتنا بھی کوئی کھا لے اس کا جو انجام ہوتا ہے ان دی اینڈ وہ کم ہی ہوتا ہے، جو اس کا اینڈ جو فیٹ نکلتا ہے وہ قلت اور کمی ہی نکلتا ہے انجام اس کا. تو ظاہر ہے ایسا بہت سارے ایگزامپلز بھی نظر آتے ہیں، ایک بندہ ہے بہت بڑا سود خور ہے، انٹرسٹ بیس کاروبار کر رہا ہے، لونز وغیرہ دے رہا ہے لے رہا ہے، اس پہ بڑی بڑی فیکٹریز ملز کا مالک ہوتا ہے اور اینڈ میں جا کے اس کو کھانے کے واندے پڑ جاتے ہیں، دیوالیہ کروڑ پتی ہوتا ہے اور اینڈ میں دیوالیہ اور محتاج ہو کر مرتا ہے. تو ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے کے آ رہے ہیں. اس کی سخت وعیدیں ہمیں قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی کہ آتا ہے یمحق اللہ الربا، کہ جو ربا اور سود کی کمائی ہوئی دولت ہے اس کو اللہ تعالیٰ برکت سے محروم کر دیتے ہیں، جتنی بھی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے. اسی لیے آج کی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہے، اس کی چوکیدار کوئی ملازم ہے، 12-15-20 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، وہ بھی پریشان ہے بیچارہ. ظاہر ہے چلیں اس کی تو تنخواہ اتنی کم ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی 50 ہزار روپے کمانے والا ہے وہ بھی پریشان ہے. بڑے بڑے یہی بینکوں میں کام کرنے والے لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، 5-5 لاکھ. ایک صاحب ملے کہنے لگے بھائی میری 6 لاکھ روپے مجھے ایک بینک سے تنخواہ آفر ہوئی ہے، وچ از الاٹ. لائک نارملی ظاہر ہے جب ایک چوکیدار کی تنخواہ سمجھیں 20 ہزار روپے ہو اور آپ کو اس کے 30 ٹائمز آفر ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ ایک آوڈی کی گاڑی مجھے ساتھ میں اور ایک گھر بھی بینک کی طرف سے ملے گا، کیا کروں یار اتنی زیادہ نہیں ہے، مجھے کم لگ رہی ہے، نہیں لینی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی کہنا چاہیے کہ 6 لاکھ اتنی بڑی تنخواہ ہوتے ہوئے بھی، گاڑی گھر بنگلہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اینڈ میں کنفیوژن یہی رہتا ہے کہ کم ہے یار، پوری نہیں ہے، اس میں خرچہ پورا نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان فرمائی جس میں پیشن گوئی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر الزمان آج کے زمانے کے حوالے سے غالباً یہی فرمایا، جو بالکل صاف ایسے لگتا ہے بظاہر کہ یہ حدیث آئین ہی بالکل نظر آتے اپنے سامنے ہوتے ہوئے ایسا نظر آتا ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا وَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِي ویوروا من غباری، کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ بندہ بندہ سود کھا رہا ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ سود خوری میں किसी ना किसी फॉर्म में खाने वाले पे लगा हुआ होगा। और अगर कोई बंदा है बहुत अपनी तरफ से बचता है, जाहिर है ऐसे हैं, हर दौर में होंगे यकीनन अल्लाह के नेक बंदे जिनके बारे में आता है कूनू मा सादिकीन, इन नेक लोगों के साथ तुम हो जाओ, तो जाहिर है कोई ना कोई तो मौजूद होते हैं। लेकिन वो बचने वाले जितना भी लोग बच लेंगे, लेकिन इस आज के जैसे बैंकिंग के दौर में बात कैटेगोरिकली बिल्कुल हमें नज़र भी आती है कि उसका जो धुआँ है, ये जो उसके बुखारात कहा गया, जिसे उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स कहा गया, वो उस बंदे तक भी पहुँचेंगे। जाहिर है कोई महफूज नहीं रहेगा आज के सोसाइटी में। अगर हम देखते हैं, अच्छा जी मैं तो एक रुपए का भी सूद ना लेता हूँ ना देता हूँ, लेकिन पैसे कैसे रखूँ, क्या करूँ, ऑप्शन ही नहीं है, जाके किसी बैंक में ही रखने पड़ेंगे, जाहिर है मजबूरी है, और किसी और से कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो आपको चेक देगा, फिर बैंक जाना पड़ेगा उसे कैश कराने के लिए। तो बैंक्स के को बिज़नेस दिए बगैर तो कारोबार करना अब आज के ज़माने में तो मुमकिन ही नहीं है। आप LLC कैसे खोलेंगे, आप अगर इम्पोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, चाहे वो DA पे कारोबार करना हो, चाहे वो LC खोलना हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी फॉर्मेट हो, बट उस सूदी इदारे से वाबस्ता हुए बगैर तो सर्वाइव करना ही पॉसिबल नहीं रहेगा, चाहे कोई बंदा कोई 0 रुपए का भी सूद करने के इंटरेस्ट में हो, फेवर में हो। इसीलिए ये हदीस में कैटेगोरिकली फरमाया कि एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सूद की जो आम लेन देन होगा बिल्कुल कॉमन हो जाएगा और कोई बंदा उससे महफूज नहीं रहेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा उससे महफूज रहना। तो जाहिर है आज वो दौर हम देखते हैं शायद गालबन के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1438 समथिंग ईयर्स पहले फरमाया कि ऐसा ज़माना आएगा कि बंदा बंदा सूद के कारोबार में मुलव्वस होगा और नहीं भी होगा बचता होगा, बट उसके ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, उसका धुआं, उसके बुखारात जिसे कहा गया, वो उस बंदे तक पहुंच ही रहे होंगे। तो आज हम लोग ये देखते हैं कि वो वक्त शायद गालबन हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे थे। अब जाहिर है एक तो वो रिबा है जो पैसे के ऊपर पैसा जिसे कहा जाता है, जिसे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने कहा कि ये हकीकी रिबा है, यानी पैसे दिए किसी को कर्ज़ दिया और उस पर सूद खाता गया, तो ये तो हकीकी रिबा है। एक हुक्मी रिबा भी है जिसके बारे में हदीस वगैरह में मना फरमाया कि ये भी रिबा होगा। रिबा सिर्फ यही नहीं है कि किसी को पैसे दिए और उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, बल्कि जैसे कि रिवायात में 6 चीज़ों को ख़ास तौर से कैटेगोरिकली फरमाया, ज़हब बिस्ज़हबी वल्फ़िज़्ज़ातु बिल्फ़िज़्ज़ाति वल्बुर्र बिल्बुर्री वश्शईरु बिश्शईरी वत्तमर बिततमर वल्मिल्ह बिल्मिल्ह मिस्लम बिमिस्लिन सवान बिसवान यदन बियदन, कि इन 6 चीज़ों का जब तबादला हो, एक्सचेंज हो, तो बिल्कुल बराबर सराबर हो, उसके वेट में, उसकी क्वान्टिटी में अंदर बिल्कुल इक्वालिटी हो, कोई भी किसी किस्म का डिफरेंस ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो रिबा हो जाएगा। तो ज़ाहिर है इनके ऊपर फुकाह ने इनकी बहुत ही एक्सप्लेनेशंस दी हैं हमें कि कौन कौन से कमोडिटीज़ ख़ास तौर से ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस इन रिवायात में, बहुत सारी ये रिवायात में मुस्लिम शरीफ की दूसरी कुतुब हदीस वगैरह की हमें मिलती हैं, जिनमें इन 6 चीज़ों को तो कैटेगोरिकली फरमाया कि इनके लेन देन जब होगा, एक्सचेंज होगा, सोना का, चांदी का, गेहूँ का, जौ का और नमक का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो सारी चीज़ें हैं, तो इनका तो एक्सचेंज भी होगा। अब कोई अगर बंदा कहे कि जी ये मैं 24 कैरेट गोल्ड है मेरे पास, 1 आउंस, मैं इस 24 कैरेट गोल्ड 1 आउंस को अगर 18 कैरेट गोल्ड 2 आउंसेस से एक्सचेंज करता हूँ, तो गो प्रॉबली हो सकता है उसकी यानी मोनेटरीली उसकी जो वैल्यू है वो शायद प्रॉब्ली सेम हो, बट उससे भी मना फरमाया कि नहीं, ये चीज़ें 6 चीज़ें जब एक्सचेंज कर रहे हो कि उनका वेटेज एक इक्विवेलेंट होना चाहिए, वरना एक्सचेंज भी ना करो, क्योंकि जाहिर है इसी से फिर सूद का आगे दरवाज़ा खुलेगा। तभी कहा गया बराबर सराबर एक तो हो, और फिर हाथ के बदले हाथ हो, एक हाथ दो एक हाथ लो, यानी गोल्ड और सिल्वर और इन बाकिया चीज़ों को जब एक्सचेंज किया जाए, इसका पैसे दिए जाए, एक हाथ पैसा दिया और दूसरे हाथ से लिया, यही हो तो सही है। इसी वजह से शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने हुज्जतुल बलागा में इन हदीसों की एक्सप्लेनेशन करते हुए यही बात फरमाई कि जो ओरिजिनल रिबा था वो तो जाहिर है वो कर्ज उधार वाला ही सूद था जिसके बारे में कुरान में पहले फरमाया गया, लेकिन ये जो फॉर्म है हुक्मी रिबा का, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब भी इसके बारे में मना फरमाया, क्योंकि जो इसका एंड रिज़ल्ट होता है वो फिर उसी तरह से डेंजरस और वही पैदा होता है, कोई किसी को धोखा ना दे दे, और इसी की सख्त ममानियत फरमाई। इसी वजह से ज़ाहिर है एक ह्यूमन नेचर के की बात है ये कि इंसान का जो दिमाग है वो तरक्की का दिमाग होता है, वो दिन ब दिन चाहता है बेहतर हो, हर चीज़ में बेहतरी पैदा हो, जो रहने सहने का तरीका है, फैसिलिटीज़ हैं, आपकी इक्विपमेंट है, आपकी मशीनरी है, आपका बिस्तर से लेकर एक एक चीज़ उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के तहत दिन ब दिन बुलंद से बुलंदतर मयार इंसान की लाइफस्टाइल का होता जा रहा है। और इसी वजह से इसकी ममानियत फरमाई कि ऐसी ज़िंदगी इस्लाम को ठाट बाट वाली, रईसाना शान वाली ये अल्लाह को पसंद शायद नहीं। इसी वजह से अल्लाह ने इसके ख़िलाफ़ अपना ऐलान जंग फरमाया, जो बंदा इस बेहतर मयार के तहत पैसे नहीं भी हैं तो भी फिर सूद पे, फिर कर्ज़े पे, फिर इस तरह से किसी तरह से माल बढ़ाने के चक्रों में लगेगा, तो बेहतर है कि इन इटसेल्फ इसकी जड़ को काटा जाए और इस सूद को ही हराम करार दे दिया जाए। तो आला मयार ज़िंदगी का जो तकाजा होता है ज़ाहिर है वो यही है कि हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया हो, आला मयार की इस्तेमाल की जाए। गोल्ड है तो बेहतरीन 24 कैरेट हो, डायमंड है तो बिल्कुल क्लैरिटी वाला सॉलिटेयर हो, गेहूं हो, चावल हो, नमक हो, चांदी हो, एक्सेट्रा, हर चीज़ के अंदर बेहतरीन क्वालिटी, और बंदा यही चाहेगा। तो बराबर सा बराबर की जब शर्त लगा दी तो ऑटोमेटिकली उस दूसरे को धोखा देने वाले या शुबा वाले मामलात को खुद ही जड़ से काट दिया गया। इसी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा तशरीफ़ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्हें कुछ खजूरें थी उनके पास, यू नो डेट्स थी, वो उन्होंने पेश की। तो उन्होंने पूछा ये कहीं का, ये क्या है बिलाल? इस पर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास रद्दी खजूर थी कुछ, यू नो बिल्कुल लो क्वालिटी की, 2 साइन थी, मैंने वो जाके किसी से एक्सचेंज कर ली, 1 सा बिल्कुल यू नो टॉप ऑफ द लाइन खजूर के बदले में, अजवा थी गालबन जो भी उस ज़माने की टॉप ऑफ द लाइन खजूर थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वह आइन और रिबा, ये तो बिल्कुल ऐन रिबा तुमने वाला काम कर दिया, ला तफल, ऐसा ना करो, वला कि निज़ा रत्ता अन तश्तरी फबिअत तमरी बिबैन आखरा सुमश्तरा तरीबी कि अगर एक्सचेंज करनी है तो या तो बिल्कुल वेटेज के एतबार से इक्वल एक्सचेंज करो, और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर ये दूसरा तरीका है कि जाके पहले अपनी खजूर तुम जाके बेचो, उसे सेल करो, फरोख करो, फिर उसकी कीमत से जाके दूसरी खजूर ख़रीदो, क्योंकि अगर हमने इसकी भी इजाज़त दे दी कि एक्सचेंज डायरेक्टली हुआ जाए तो वो गोया के दरवाज़ा खोल देने वाली बात है, और फिर स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली लोग एक से बढ़कर एक दूसरे कामों में बढ़ते जाएंगे, और उसी में ही लो जते निकाल के मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो उसको गोया जड़ से ही काट दिया। इतनी सख्त ममानियत की वजह यही है क्योंकि ये सूद एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सोसाइटी को, उसकी जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है, और ये बिल्कुल किसी किस्म के भी कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है, क्योंकि आज की इस मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर बैंकिंग और इकोनॉमिक्स के जो माहिरीन हैं अगर उनसे भी पूछा जाए तो वो यही बताएंगे कि ये सूद और रिबा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को किल कर देती है। इसी वजह से जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं और बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, उनका अल्टीमेट गोल इज़ टू रिमेन डेट फ्री। स्प्रॉट इंक के नाम से मिसाल के तौर पे एरिक स्प्रॉट हैं या रिक रूल के वगैरह, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च करते हैं और उनका एंड टारगेट ये होता है कि हम लोग डेट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें, क्योंकि ये डेट एक ऐसी चीज़ है कि ये आगे से सूद को और फिर सूद आगे से पूरे माशरे की तबाही को बिल्कुल गोया उसका एंड रिज़ल्ट निकलता है। तो उससे बचने के लिए इनिशियल स्टेप्स ही लेना ये इंसान की सबसे बेहतरीन और अकलमंदी के काम होगा। आज के लिए इतना ही। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलाम अलल मुरसलीन, वलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।